நமோ ஆயுர்யாணம் நமோ உபத்யாயாணம் நமோ சர்வசாணூணம் ஏசோ பஞ்ச நமோ யாரு சவ்வ பாவ பணாசனம் மங்களானஞ்ச சவ்வேசிம் படமம் ஹவை மங்களம் சத்தாரி மங்களம் அர்ஹந்த மங்களம் சித்த மங்களம் சாஹு மங்களம் கிவலி பண்ணத்து தம்மோ மங்களம் சத்தாரிலுபுத்தமா அர்ஹந்தலுபுத்தமா சித்தலுபுத்தமா சாஹுலுபுத்தமா கிவலி பண்ணத்து தம்மோலுபுத்தமா சத்தாரி சரணம் பவ்வஜாமி அர்ஹந்த சரணம் பவ்வஜாமி சித்த சரணம் பவ்வஜாமி சாஹு சரணம் பவ்வஜாமி கேவலி பண்ணத்து தம்மோ சரணம் பவ்வஜாமி பரம் பூஜ்ய தேவாதிதேவ தீர்த்தங்கர் ஸ்ரீ சாந்தினாத் பகவான் கீ ஜின்வாணி மாதா கீ ஆச்சாரிய குரு ஸ்ரீ வித்யாசாகர் முனிராஜ் கீ மணியனாய்ந்த சிறு தரிய தத்த பஞ்சகல்லான சோக்காவளி தத்த தன்சனாண ஜானம் அனந்தம் பலம் Thank you. पश्यामि भन्ते पंच महागुरु भक्तिकाउ सगौ तत्सालोचे अठ महापाणिहेर संयुक्तानम अरहंतानम अठ गुण संपन्नानम उद्दलोय मत्स्यम पैठ्यानम सिद्धानम अठ पवेणम संयुक्तानम आयरियानम आयारागसुदनानो उपदेशयानम उवज्जायानम तिर्यण गुण पालन रयानम शब्द साहूणम निष्कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमसामी दुखखौ कमखौ बोहिलाहौ सुवै गमनं समाहि मरणं जडगुण संपत्ति हो विमज्जनम् वस्त्र का दृष्टांत देकर पहले मंगलाचरण कर वंदित सव सिद्धि ध्रुव मचल मणोव मंगईं पत्ते वो छाम समय पाहुड मिणमो सुय केवली भणियम कथा ज्ञाता भी जैसे वस्त्र बदल जाने के कारण और जानकारी न होने के कारण दूसरे के वस्त्र को अपना वस्त्र मानकर बेफिक्र होकर सो जाता है उस वस्त्र को धारण करके, फिर पहचान कराने पर स्वीकार कर लेता है कि सही बात है, इन चिन्हों से तो स्पष्ट होता है कि वस्त्र मेरा नहीं है, और उस वस्त्र को छोड़ देता है। तथा ज्ञाता पे उसी प्रकार कोई ज्ञानी जीव मिथ्यात्व दशा जब तक रहती है संसार में तब तक वो अज्ञानी की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि तत्व ज्ञान उसमें नहीं है। भले विद्वान होगा और संसार की दृष्टि में बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान से रहित जो भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है। तो संभ्रांतिया है, अपने संभ्रम के कारण, विपरीत धारणा के कारण, उस भ्रम के कारण परकीयान भावान आदाय आत्मीय प्रतिपत्तियान मणि अध्यास्य शयान। अनादिकाल से संसारिक प्राणी भी पर भावों को यानी पर पदार्थों को भी और कर्म के निमित्त से होने वाले जो अपने अंदर के विकारी भाव हैं उन सबको भी अपने में ही स्वीकार करके, अर्थात अपना स्वरूप मानकर, अपना रूप और स्वरूप जानकर शयान है, चारों गतियों में सो रहा है। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर आदि नौकर्म द्रव्य को और ज्ञानावरण आदि कर्मों को और उन कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले अंदर के विकारी भाव इन सबको आत्मा का ही स्वरूप मानकर चार गतियों में सोया हुआ है। और सोते समय अंधेरा जरूरी है ना, एकदम तेज लाइट हो आपके मुंह के ऊपर तो सो नहीं सकते, तो वो मिथ्यात्व के प्रगाढ़ अंधकार में सोया हुआ है, घना अंधकार, उसको कुछ दिख नहीं रहा है। स्व और पर का कोई भेद ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, बस पर को स्व मानकर और स्व को पर मानकर सोया हुआ है। वो मेरा है, मैं उसका हूँ, वो मैं हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह सो गया है। तो स्वयं अज्ञानी सन, स्वयं तो अज्ञानी है, क्या करें, और वो तो सो ही रहा है। तो गुरुणा पर भाव विवेकं कृत्वैकी क्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुद्धस्व एकखल्लेम आत्मा इत्यसकृत श्रौतम वाक्यम श्रृण्वन निखिले शिन्नैः सुष्ठु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन् मुञ्चति सर्वान् परभावान् अचिरात्। बड़ी बड़ी पंक्तियां लिखते हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, एक पंक्ति में कभी कभी दो तीन पेज भर जाते हैं पर बड़ी सुंदर पंक्तियां होती है और कहीं भी नीरस नहीं लगती। होते हैं कहीं कहीं कठिन शब्द होते हैं, बड़ी प्रौढ़ टीका है, बहुत उच्च कोटि की संस्कृत भाषा है और बिल्कुल साहित्यिक ढंग से उन्होंने वर्णन किया। इसको दंडान्वयी टीका कहते हैं और आचार्य जयसिंह स्वामी ने जो टीका की है वो खंडान्वयी है। दंडान्वयी टीका में एक लगातार धारा प्रवाह व्याख्यान चलता है और खंडान्वयी टीका में क्या होता है कि गाथा के जो शब्द हैं उनको एक एक करके खंडित कर करके उसके खंड बना करके फिर व्याख्यान किया जाता है। तो खंडान्वयी टीका बड़ी सरल होती है लेकिन दंडान्वयी टीका बड़ी उत्कृष्ट और जटिल होती है, पर बहुत सुंदर टीका है। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव मिथ्यात्व के अंधेरे में चारों गतियों के पलंग पर सोया पड़ा है, क्या समझकर, जैसे उस रजक के यहाँ से, धोबी के यहाँ से किसी अन्य के वस्त्र को अपने वस्त्र समझकर, उनको धारण करके कोई मनुष्य अपने घर पर आकर सब लाइट वाइट ऑफ करके चद्दर तान के सो जाता है और फिर कोई आकर के उसको जागृत करता है कि अरे भाई तुम मेरे कपड़े लेकर के सोए हो, ये तुम्हारे नहीं है। फिर वो पहले तो लड़ता है कि नहीं मेरे हैं मेरे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, बोले ऐसी बदमाशी है, तुम मेरे घर आकर के कर रहे हो, ऐसी सब बातें करता है। लेकिन फिर जब वो बताता है कि देखो ये लाल किनारी है और फिर ये ऐसे ऐसे चिन्ह है, तो चिन्हों को देख करके उसको विश्वास होता है कि सही बात है, मेरे कपड़े में तो ये सिर्फ निशान नहीं थे, मेरे कपड़े तो अलग थे, तो फिर उस वस्त्र को छोड़ देता है। इसीलिए ज्ञान को त्याग कहा है, क्यों, क्योंकि त्यागने योग्य जानकर ही त्यागने योग्य का त्याग होता है। इसलिए ज्ञान त्याग का कारण हो गया और कारण में कार्य का उपचार कर दिया, तो उपचार से ये कह दिया कि ज्ञान ही त्याग है। जैसे उदाहरण के लिए विष का प्याला हो, कोई पूछे कि क्या है, मौत, कहते हैं कि नहीं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मौत का कारण है। तो कारण में कार्य का उपचार करने की भी शैली लोक में प्रचलित है और शास्त्रों में भी कहीं कहीं पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं, कारण में कार्य का उपचार करके उसको ही वैसा कह दिया जाता है। विष का उदाहरण तो बहुत स्पष्ट है, एक विष किसी पात्र में हो, कोई पूछे कि क्या है, मृत्यु है, तुम्हारी मृत्यु है अगर तुम पी लो, इसका मतलब ये है कि वो मृत्यु का कारण होने के कारण उसको मृत्यु कह देते हैं। ठीक इसी प्रकार है कि ज्ञान ही क्या है, त्याग है, क्यों, क्योंकि ज्ञान से वो त्यागने योग्य को त्यागने योग्य जाना जान रहा है और फिर त्याग रहा है, इसलिए ज्ञान ही त्याग है। तो इसी तरह उस वस्त्र को धारण करने वाले उस अनजान मनुष्य के समान अपना समझने के कारण सोया हुआ था वो, उसको जगाने के बाद चिन्हों से पहचान कराने के बाद छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार जब गुरु उसको जगाते हैं, चार गतियों में से देखो गुरु कौन सी गतियों में मिलते हैं, नरक गति में तो गुरु नहीं मिलते हैं। ये वहां के क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि उस क्षेत्र तक वहां तक जा नहीं सकते गुरु। बाकी तीन गतियों में गुरु की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसमें भी गुरु मनुष्य लोक वाले त्रियंचों को और मनुष्यों को तो प्राप्त हो सकते हैं, पर मनुष्य लोक के बाहर जो भोग भूमिया है अथवा स्वयंभू रमण समुद्र और द्वीप है, वहां के मनुष्य त्रियंचों को, वहां के मनुष्य तो है ही नहीं, वहां तो केवल त्रियंच है, वहां के त्रियंचों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती। बाहर से थोड़ी आवाज आ रही है। तो जब गुरु जगाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जीव नरक जाने से पहले मनुष्य था और उसको गुरु ने जगाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय तो वो सोया रहा, नरकों में जाकर जब वहां की वेदना उसने भोगी तब उसको स्मरण आया पूर्व का, और फिर उसको जागृति आ गई कि उनने ऐसा कहा था वो बात सही थी, उस समय तो मैंने स्वीकार नहीं किया था लेकिन आज मेरी समझ में आ गई। तो वहां उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, वहां वो जाग जाता है। तो गुरु नाम पर भाव विवेकम कृत्वैकी क्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुद्धिस्व, दूसरे पदार्थ और दूसरे भाव जो अपने शुद्ध भाव नहीं है, विकारी भाव है, उन सबको आत्मा से, आत्मा के निर्मल स्वरूप से भिन्न करके समझाने पर, और फिर उसको कहने कहते हैं गुरु की मंक्षु प्रतिबुद्धिस्व, जागो जल्दी जागो। एक यह आत्मा, एक यह आत्मा है और ये सब जो है तेरे से भिन्न है, जब उसको समझाते हैं तो उन बातों को असकृत श्रोतम बार बार सुनता है वो। वो कभी कभी पूछता है कि फिर से बोलिए गुरुवर आपने क्या कहा। गुरु कहते हैं तेरी रुचि है तो मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से बोलते हैं। ऐसे बार बार जब गुरु समझाते हैं तो निखिल चिन्हई सुष्टु परीक्षा, सब चिन्हों से लक्षणों से अच्छी तरह परीक्षा करके, जैसे इसमें और भी आता है वर्णन कि कान जो है केवल आवाज सुनते हैं, रूप को नहीं देखते, आंखें रूप को देखती है आवाज नहीं सुनती, सब इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं, अन्य इंद्रियों का कार्य कोई इंद्रिय नहीं कर सकती, लेकिन उन सब इंद्रियों के द्वारा गृहित कोई भी पदार्थ है, उन सब इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने वाला कोई एक पदार्थ है, वो तो एक ही है ना, वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो चखता भी है, वो सूंघता भी है, वो छूता भी है, अर्थात वो कौन है जो देखी हुई चीज को भी जान लेता है, सुनी हुई बात को भी समझ लेता है, चखे हुए स्वाद को भी पहचान लेता है, सूंघी हुई गंध का भी परिचय पा लेता है, और स्पर्श में आई हुई वस्तुओं के स्पर्श को भी पहचान लेता है, वो कौन है? तो वो कोई एक वस्तु है, वो ये पांच नहीं है। तो ऐसे कई उपायों से गुरु जब उसको समझाते हैं कि देख ये तू नहीं है, ये स्पर्शन इंद्रिय तू नहीं है, रसना भी तू नहीं है, लेकिन ये सब, इन सब इंद्रियों के पीछे कोई रहस्यमय पदार्थ है जो स्पष्ट दिखाई नहीं देता, कोई छुपा हुआ तत्व है जो इन पांचों खिड़कियों से अकेला देखता और जानता है। ये पांच इंद्रियां तो खिड़कियों के काम पर करने वाली, खिड़कियों का काम करने वाली, लेकिन इन खिड़कियों से जानने वाला देखने वाला तो एक है, वो तू है। तू शरीर नहीं है, तू इंद्रिया नहीं है, तू शरीर के अंदर के अंग प्रत्यंग आदि भी नहीं है, तू वाणी भी नहीं है। तू जो है वो तू चेतन स्वरूपी आत्मा है, बिल्कुल शुद्ध भगवान जैसा तेरा स्वरूप है। परम पारिणामिक भाव की दृष्टि से देखें, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से विचार करें, शुद्ध निश्चय से विचार करें, तो फिर तुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। निश्चय से तो तू ही भगवान है। इस तरह जब गुरु समझाते हैं तो निश्चितम एते प्रभावा, वो अंदर ही अंदर विचार करता है कि निश्चित रूप से ये शरीर आदि पर पदार्थ है, क्रोध आदि जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं ये पर पदार्थ और आत्मा के संयोग से, उनके निमित्त से आत्मा में हो रहे हैं, लेकिन वो पराश्रित होने के कारण मेरे निजी शुद्ध भाव नहीं है, निरपेक्ष भाव नहीं, सापेक्ष है। मुझ में होते हैं लेकिन मेरे शुद्ध स्वभाव नहीं है, विकारी भाव है। स्फटिक में लाल रंग दिख रहा है तो लाल रंग स्फटिक का है क्या? स्फटिक में है पर स्फटिक का नहीं है। उसी प्रकार क्रोधादि विकार मुझ में है, मेरे नहीं है। कितना अंतर हुआ, अपने में होना और अपने होना, इनमें फर्क है कि नहीं? अशुद्ध निश्चय कहता है कि अपने हैं क्रोधादिक, लेकिन शुद्ध निश्चय कहता है कि नहीं अपने नहीं है। ये सब पर के निमित्त से हो रहे हैं तो पर भाव है। लाल कपड़े के ऊपर स्फटिक रखा और लाल दिख रहा है तो वो लाल रंग कपड़े के निमित्त से आया है, स्फटिक में कपड़े का लाल रंग कपड़े में है, और स्फटिक में जो लाल रंग झलक रहा है वो स्फटिक में है, वो कपड़े में नहीं है, वो स्फटिक में है, लेकिन स्फटिक का नहीं। में और का फर्क समझ लीजिए। तो इसी प्रकार गुरु जब उसको समझाते हैं तो सुष्टु परीक्षा, खूब परीक्षा करता है वो, खूब अच्छी तरह से सुष्टु शब्द लिया, अकेला परीक्षा नहीं लिखा है, सिर्फ परीक्षा नहीं कर रहा है, सुष्टु अच्छे ढंग से परीक्षा करता है कि ये जो जो बातें कह रहे हैं गुरु, गुरु झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन तो भी मेरा कर्तव्य है कि मैं थोड़ी परीक्षा करके फिर उसको स्वीकार करूं, क्योंकि परीक्षित वस्तु कभी भ्रम पैदा नहीं करती। और सत्य का पारखी कभी बहकावे में नहीं आता, इसलिए पारखी बनने की भी बात यहां पर दी हुई है। तो वो शिष्य पारखी बनकर गुरु की बातों का परीक्षण करता है, अपने अंदर झांक करके देखता है कि ये जो जो बातें कही हैं गुरु ने, ये बातें मुझ में घटित हो रही है कि नहीं हो रही है। पांच इंद्रियों के बारे में जो बात कही वो बात बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक इंद्रिय अपना कार्य करने में समर्थ है, अन्य इंद्रिय का कार्य नहीं कर सकती। फिर पांचों इंद्रियां खिड़की के समान है, मैं तो उन सबको जानता हूं जो इंद्रियां ग्रहण करती है, मैं रूप को भी जानता हूं, मैं रस को भी जानता हूं, मैं स्पर्श को भी जानता हूं, मैं गंध को भी जानता हूं, मैं वर्ण को भी और सब इंद्रियों के विषयों को, शब्द को भी जानता हूं। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, क्योंकि शरीर क्या है, इंद्रियों के ढेर का नाम शरीर है। आप देख लीजिए शरीर में कहां नहीं है इंद्रियां, हर कोने में इंद्रियां मिलेंगी आपको। ये है कि चार इंद्रियां ये गले से ऊपर मिलती है, चार इंद्रियां जो है ना ये इधर शीर्ष भाग में मिलती है, इनको स्पेशल सेंसेस बोलते हैं मेडिकल साइंस में। ये चार इंद्रियां देखिए आप, रसना इंद्रिय ऊपर है ना, इसी मस्तक वाले स्थान में, रसन इंद्रिय, फिर घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय, बहुत पास पास है, बिल्कुल कुछ उंगलियों की दूरी में है, लेकिन एक ऐसी इंद्रिय है जो सब जगह व्याप्त है, यहाँ तक के कि वो आंखों के अंदर भी वो स्पर्शन इंद्रिय है। आप ऐसे छुओ या आंख में कुछ चला जाए तो महसूस होता है स्पर्श, कान में भी है स्पर्शन इंद्रिय, नासिका के अंदर भी स्पर्शन इंद्रिय है, अगर तेज ड्रॉप्स डालो तो कैसे तिल मिलाते हैं, छटपटा दो, तो स्पर्शन इंद्रिय तो सर्वत्र है, लेकिन बाकी इंद्रियां निर्धारित स्थानों पर है। तो ये शरीर इंद्रियों का ढेर है, पर चूंकि मैं इन सबके विषय को जानता हूं तो मैं शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंद्रियां तो सीमित है अपने निर्धारित स्थानों पर, और फिर मैं अकेला स्पर्शन इंद्रिय भी नहीं हो सकता, भले स्पर्शन इंद्रिय सर्वव्यापी हो पूरे शरीर में हो, लेकिन मैं स्पर्शन इंद्रिय अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं बाकी इंद्रियों के भी विषयों को ग्रहण कर लेता हूं। ऐसे अनेक उपाय, जे दृष्टा छे दृष्टि नो जाने छे जे रूप, अबाध अनुभव जे रहियो ते छे आत्मस्वरूप। श्रीमद राजचंद जी ने लिखा आत्मसिद्धि शास्त्र में, काफी अच्छे दोहे हैं उसमें, तो उसमें बोलते हैं कि जो दृष्टि का भी दृष्टा है, दृष्टा है, और जाने छे जे रूप, जो रूप को जानता मात्र है, अबाध अनुभव जे रहे, वो अबाध अनुभव है उसका, आप सोकर उठेंगे तो भी अगर पूछा जाए कि कैसा रहा, मतलब आज रात का विश्राम कैसा रहा, तो आप सोते समय तो कोई होश नहीं रहता, लेकिन उठने के बाद भी, तो सोचने की बात है कि सोते समय अपन चेतना रहित नहीं हो जाते, उस समय भी जानना और देखना चालू रहता है, वो अचेत जैसे होते हैं अचेत नहीं होते, इसलिए उठने के बाद जब कोई पूछे कि कैसा रहा रात्रि विश्राम, तो आप उस ज्ञान से जो सोते समय भी चल रहा था उस ज्ञान के आधार पर कह सकते हैं कि उतना अच्छा नहीं। ये उतना अच्छा नहीं कैसे पता चला नींद में, बताइए, निद्रा के समय ये कैसे जाना कि उतना अच्छा नहीं हुआ विश्राम, कितना अच्छा जितना वहां हुआ था, वहां कितना अच्छा हुआ था, बिल्कुल सोए तो बस सोए आंख खुली, तो तब तो तुम्हें पता ही नहीं होगा रात कैसे निकल गई, नहीं लेकिन बहुत अच्छी नींद आई थी, बहुत अच्छी कैसे पता चला। तो कभी भी चेतन अचेतन नहीं होता, अबाध अनुभव, और बार बार जो मैं चलता रहता अंदर, भले वो भ्रम रूप है मैं, लेकिन उस मैं की जो गहराई है उसको देखो तो पता चलेगा कि कोई एक ऐसी वस्तु है जो बार बार अपने आप को मैं कह रही है, वो वस्तु कौन है, वो भले भ्रम रूप से मैं मिला मिश्रित करके मिक्स करके बोल रही है किसी और के साथ, लेकिन वो मैं कहने वाली वस्तु कौन है। इतनी सब बातों को सुन करके फिर वो सुष्ठु परीक्षा, अच्छी तरह परीक्षा करके निश्चितम निश्चित हो गया, अपने अंदर ही अपने आप से कहता है कि निश्चित हो गई बात, एते परभावा, ये सब परभाव है, इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन, इस प्रकार जानकर वो ज्ञानी होता हुआ मुंचति सर्वान परभावान अचिरात, बहुत जल्दी सब परभावों का त्याग कर देता है। धारणा में तो छोड़ी दिया उसने, सब पर भाव है, ये मेरे भाव हैं, इस धारणा को तो उसने उसी समय छोड़ दिया जब उसको समझ में आ गया कि ये पर भाव है, मेरे शुद्ध स्वभाव नहीं है। यहां पर एक बड़ा सुंदर कलश आचार्य अमृतचंद स्वामी ने दिया है, अवतरति न यावत वृत्तिमत्यंत वेगा दनवम पर भावत त्याग दृष्टांत दृष्टि झटित सकल भावई मुक्ता स्वयं अनुभूति तावदाविर्भूव। जब तक इस दृष्टांत को आपने सुना और ये दृष्टांत पुराना नहीं पड़ गया, तब तक सब भावों से पृथक वो जो आत्मा की पहचान है वो प्रकट हो चुकती है। कुछ समझ में आया ये क्या कह दिया हमने? इस श्लोक का अर्थ क्या था? ये दृष्टांत जब तक आपने सुना है और इसका मर्म जो ही आपने सुना तब तक आपको आत्मा की पहचान हो चुकी है, ये आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं। अब वो घर जाकर जब तक दृष्टांत पुराना पड़ जाए उतना समय नहीं लगना आत्मा की पहचान करने में, बस इसको सुनते ही साथ समझते ही साथ स्व और पर का भेद विज्ञान हो चुका है समझ। ये बात अलग है कि कदाचित या क्वचित किसी के आत्मा में अगर मिथ्यात्व के निषेधों का प्रबल उदय हो तो फिर इतना सब सुनने के बावजूद जैसे अभव्य मुनि होते हैं वो तो इससे भी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और सुना भी सकते हैं, 11-11 अंगों के पाठी होते हैं, लेकिन फिर भी उनके आत्मा पर से मिथ्यात्व का पर्दा नहीं हटता। पर जिन जीवों की इस पंचम काल में इतने विकट समय में जहाँ चारों ओर विषय कषायों का बोलबाला है, जहाँ चारों ओर छल कपट बेईमानी और फिर सब अनाचार फैला हुआ है, वहाँ भी ऐसे कुछ इतने जीव हैं जो इस समयसार की बात को सुनने में रुचिवंत होकर अपने सब काम छोड़ करके यहाँ पर जिन धर्म का श्रवण करने के लिए भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, इनमें संभावना अधिक है मिथ्यात्व को तोड़ने की। बाकी जो बिल्कुल दूर है उनमें तो संभावना ही नहीं है, पर जो कुछ करीब आए हैं उनमें संभावना है। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि इतना सुनने पर तो सम्यक दर्शन हो सकता है, आत्मा की पहचान हो जाती है, लेकिन वो अंत नहीं है, उसके आगे भी बहुत बड़ा कार्य बाकी रहता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि सम्यक हो गया काम, अभी काम नहीं हुआ, अभी तो काम शुरू हुआ, टिकट मिला है, अभी तो ट्रेन पर चढ़ना बाकी है। ज्ञान और चारित्र पर चलने वाली जो पटरी है, ज्ञान और चारित्र की पटरी पर चलने वाली जो गाड़ी है उस पर चलना है। कल चर्चा निकली थी ना, याद है आपको, अहमदाबाद जंक्शन है, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, 12-13। तो बात यह है कि ये मनुष्य भाव जो अपने को मिला है ये भी एक प्लेटफॉर्म है, एक जंक्शन है, यहाँ से सब तरफ गाड़ियाँ जाती है। दो ऐसी योनियां हैं जहां से मनुष्य गति प्राप्त नहीं होती, अग्निकायिक और वायुकायिक जीव, ये मर करके मनुष्य पर्याय में नहीं आते। बाकी कहीं से भी कोई भी जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है, और इनकी 7-7 लाख योनियां होती हैं। निच्छिदर धातु सत्य नहीं, 7-7 लाख योनियां नहीं, ठीक है, विकलेंद्रियों में 2-2 लाख योनि है, इनकी तो 7-7 लाख योनि है, ठीक है। तो 7 लाख अग्निकायिक जीव की योनियों वाले और 7 लाख वायुकायिक जीव, ये मनुष्य पर्याय को धारण नहीं करने वाले जीव हैं, और 7वीं पृथ्वी वाले जो नारक होते हैं वो भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त नहीं होते, इतना नियम है। लेकिन बाकी कोई भी जीव कहीं से भी आकर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हो सकता है, और मनुष्य पर्याय वाला जीव 84 लाख योनियों में से कहीं भी जाकर जन्म ले सकता है। अब सोचो आप, ऐसा जंक्शन कहीं नहीं है, चारों गतियों में कोई ऐसा जंक्शन नहीं है जहां से सब तरफ ट्रेन जा रही हो, मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है कि जहां से 84 लाख योनियों में कहीं भी जाकर के उत्पन्न हो सकता है। अब इस जंक्शन में आकर मनुष्य ने जब जन्म धारण किया तो जन्म धारण करते समय वो ट्रेन में बैठा नहीं था, पैदा हुआ था तब तो वस्त्र ही नहीं थे उसके ऊपर, लेकिन धीरे धीरे माता पिता की संगति में, सहपाठियों की, अड़ोस पड़ोस के लोगों की संगति में और विद्यालय में शिक्षकों की संगति में और कभी कभी अस्पताल के चिकित्सक आदि की संगति में इसने बहुत सारी नई नई चीजें सीख ली, और भलतीज गाड़ी में बैठ गया, राग द्वेष और मोह की गाड़ी पकड़ ली इसने, और राग द्वेष मोह की गाड़ी को पकड़कर ये कहीं से कहीं निकल गया। पर सौभाग्य से इसको कहीं किसी स्टेशन पर, कहीं किसी दूसरे जगह पर, यहां से तो जंक्शन से तो बहुत दूर निकल गया था, वहां निकलने के बाद कोई अनाउंसमेंट सुनाई पड़ा। रेलवे स्टेशन में अनाउंस करते ना वो, तो वो अनाउंसमेंट इसने जब सुना तो फिर उसको लगा कि मैं जिस जंक्शन पर आया था वहां से मुझे इस ट्रेन में तो नहीं आना था मेरा, क्योंकि वो आवाज जो सुनाई पड़ी उसको वहां चार गतियों की आवाज सुनाई पड़ी। तो इसने विचार किया कि चार गतियां तो मुझे मनुष्य पर्याय से प्राप्त नहीं करनी थी, मुझे तो पंचम गति प्राप्त करनी थी, तो मैं कौन सी ट्रेन में बैठ गया हूं। फिर उसको कोई गुरु मिल जाते हैं, जैसे जैसे ट्रेन में किसी को कोई मुसाफिर मिल जाए जो जानकार हो कि आपको कहाँ से वहां कहीं ट्रेन मिल सकती है, तो वो बताता है कि आपको वापस वहां जाना पड़ेगा, तो यहाँ से तुम उतर जाओ और यहाँ 3 बजे एक ट्रेन आती है, वो ट्रेन तुम्हें वहां वापस ले जाएगी अहमदाबाद, और फिर उस जंक्शन से तुम सही गाड़ी पकड़ लेना, वो राग द्वेष मोह वाला टिकट मत लेना, अब तुम्हें दूसरा टिकट लेना पड़ेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चर, तो ये उस ट्रेन में तुम बैठ जाना रत्नत्रय वाली, तो फिर वो सीधे मोक्ष नगर जाती। बीच में कुछ स्टॉप्स मिलेंगे तुम्हें देवगति आदि के, लेकिन उस ट्रेन से फिर तुम्हें अंततः वहां प्राप्ति होगी मोक्ष नगर की, पर तुम्हें लौटना पड़ेगा। तो वो लौटने के लिए फिर वो ट्रेन पकड़ता है 3 बजे वाली, और उससे फिर लौटता है जंक्शन पर, और जंक्शन पर आकर फिर सोचता है कि अब जंक्शन पर जैसे मैं आया था, अब क्या है कि मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ ली थी, दूसरी कपड़े वपड़े सब जो थे दूसरी ट्रेन के साधन थे सारे, तो अब मुझे ये उस ट्रेन की सारी चीजें छोड़ देनी है। तो फिर मुनि दीक्षा धारण करता है, तो मुनि दीक्षा धारण करते समय क्या करता है, वो जंक्शन पर खड़ा होता है, वापस बालक जैसा रूप धारण करता है, और अब फिर रत्नत्रय की ट्रेन को पकड़ करके उसमें बैठकर तपस्या के उसमें स्पीड, तपस्या की स्पीड दे करके गति प्रदान करके फिर आगे बढ़ता जाता बढ़ता जाता है। कभी कभी बीच में स्टॉप लेता है, जैसे इंजन वगैरह में पानी वानी भरते हैं ना, उसी प्रकार कभी कभी चौके में जा करके आहार पानी भरवा लेते हैं, फिर वो ट्रेन को लेकर आगे चलते हैं, और बढ़ते 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 फिर कभी किसी जंक्शन पर लंबा विराम होता है, इंजन बदलते हैं ना कहीं कहीं पर, तो वैसे ही कहीं कहीं फिर शरीर बदलते हैं, और शरीर बदल करके देवगति का शरीर धारण करके फिर वापस वहां थोड़ा विश्राम करने के बाद पुनः मनुष्य गति के शरीर को प्राप्त करके फिर आगे बढ़ते हैं निर्गंध मुद्रा धारण कर, और ऐसा करते करते 8 भव में मोक्ष की प्राप्ति करते, अधिक से अधिक सम्यक दर्शन न छूटे तो 8 भव में मुक्ति हो जाती है। तो ये जो अनुभूति रूप यहाँ पर ज्ञान की चर्चा की गई है, ये अनुभूति ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति स्वानुभूति ये सब एकार्थवाचक शब्द हैं, और ये आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि सम्यक ज्ञान के अंतर्गत है। देखो अपन तुलनात्मक अध्ययन करो तो एक आचार्य महाराज की इस पंक्ति को अगर आप प्रवचन सार में भी मिला करके देखो तो वहां पर 237वीं गाथा है, नहीं आगमेण सिज्जति सद्ग्रहणम जदि नत्थि अर्थेषु सद्धमाणो अर्थे असंजदो वाणनिवादी। आगम से मोक्ष को प्राप्त नहीं करता यदि पदार्थों पर श्रद्धान न हो, और पदार्थों पर श्रद्धान करने पर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता यदि संयम न हो। उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि असंयतस्य च यथोदित आत्मानुभूति रूपम ज्ञानम। देखो ज्ञान में लिया है आत्मानुभूति को, यथोदित आत्मानुभूति रूपम, यथोदित का अर्थ क्या है, उन 5 विशेषणों से युक्त आत्मा को देख लेना जान लेना, वो यथोदित आत्मानुभूति है। कौन से पांच विशेषण? अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। इन पांच विशेषणों से युक्त आत्मा को जान लेना सम्यक ज्ञान है। तो आत्मानुभूति रूपम सम्यक ज्ञानम, यथोदित आत्मानुभूति रूपम सम्यक ज्ञानम और यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम वा किं कुर्यात्। क्या कर सकता है ये आत्मानुभव और ये आत्मा का श्रद्धान, क्या कर सकता है? कुछ नहीं। असंयतस्य न किमपि कुर्यात्, असंयमी है इसलिए ये दोनों चीजें उसको मोक्ष नहीं प्रदान कर सकती। और जब संयमी होकर उसी में स्थिरता आ जाती है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये तीन आवश्यक है। लेकिन इन तीन की भी सविकल्प दशा मोक्ष में बाधक है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक रत्नत्रय के साथ भी विकल्प चल रहे हैं तो वो रत्नत्रय भी मोक्ष में कोई सहायता नहीं कर सकता। क्या कह दिया? कोई सहायता नहीं कर सकता जब तक संकल्प विकल्प चालू है। और जब निर्विकल्प समाधि की दशा आती है, अभेद रत्नत्रयात्मक जो शुद्धोपयोग की अवस्था है उसकी प्राप्ति होती है, तब वो शुद्धोपयोग मोक्ष का कारण बनता है। तो उसकी चर्चा की आचार्य महाराज ने। तो अनुभूति से पर भावों का विवेक होता है। और ये अनुभूति का अर्थ अपन ने देखा था कि चूंकि 20वें कलश में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा कि हम 24 घंटे ये ज्ञानानुभूति करते रहते हैं, ये आत्मानुभूति हम 24 घंटे करते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मानुभूति 24 घंटे होती है, परंतु वह शुद्धोपयोग इसलिए नहीं है क्योंकि शुद्धोपयोग 24 घंटे कभी नहीं होता। शुद्धोपयोग अंतर्मुहूर्त होता है। इसलिए इस भ्रम का इससे निवारण हो जाता है कि आत्मानुभूति से शुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग से आत्मानुभव, ये धारणा निकाल दो दिमाग से। एक ही बात हम तो बोल रहे थे अभी, आत्मानुभूति कह लो, ज्ञानानुभूति कह लो, स्वानुभूति कह लो, सब एक ही बात। तो ये ज्ञान की पर्याय। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने प्रवचन सार में स्पष्ट लिख दिया ना कि यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम। क्या कहा? चारित्रम नहीं कहा। और शुद्धोपयोग का लक्षण भी प्रवचन सार में दिया, उसकी गाथा अपन ने उस दिन पढ़ी थी कि जिनने अच्छी तरह से पदार्थ बतलाने वाले सूत्रों को जाना है और जो संयम तप से संयुक्त है, जो राग से रहित है, जो श्रमण है और जो सुख और दुख में समता को धारण करने वाले हैं, वो शुद्धोपयोगी है। अब ये स्थिति कब बनेगी? असंयम के साथ बनेगी या सम्यक चारित्र धारण करके संयम की भूमिका में बनेगी? नियम संयम के साथ ही होगी। तो इसलिए शुद्धोपयोग अलग वस्तु है, आत्मानुभव अलग वस्तु है। और आत्मानुभव में अनुभव शब्द का अर्थ एहसास नहीं है, क्योंकि किसी चीज का एहसास 24 घंटे तो हो ही नहीं सकता। होता है क्या कभी 24 घंटे? तो भूख लगेगी तब क्या करोगे? मान लो कोई सोचे कि हम 24 घंटे आत्मानुभव कर रहे हैं बैठे ऐसे, अब पांव दुखेंगे तो, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मच्छर काटेंगे, हवा की बाधा होगी, तब क्या करोगे? तो आत्मानुभव के बारे में जो ऐसी धारणा बन गई है कि आंख बंद करके अंतर्मुख होने के बाद ही आत्मानुभव होता है, ये शुद्धोपयोग के बारे में है। कि शुद्धोपयोग जो होगा वो अंतर्मुख होकर के होगा, लेकिन आत्मानुभव जो है वो तो सतत चलता रहता है। एक बार आत्मा की पहचान हो गई तो क्या वो पहचान नष्ट हो जाती है? भोजन करने के पहले आत्मा को पहचान लिया, अब भोजन करते करते क्या आत्मा चली जाती है, पहचान नष्ट हो जाती है? अब इसका एक लौकिक दृष्टांत ले लो आप। 15 वर्ष बाद आपका कोई मित्र आपसे मिलता है और कहता है कि याद है तुम, तो आप कहते हैं कि कौन हो भाई? नहीं हमें कुछ याद नहीं आ रहा, बताओ भाई कौन हो? अपन कॉलेज में साथ में पढ़े थे। अच्छा तुम हो क्या? पूरे बदल गए भाई, ठीक है, पहचान हो गई कि वही है। अब इसके बाद आप भोजन करने बैठे हैं, तो भोजन करते समय क्या वो पहचान गायब हो जाती है? नहीं होती। बस यही बात है, ये समझने की बात है कि जिससे इस दृष्टांत में पहचान एक बार होने के बाद वो पहचान कोई और कार्य में लगने पर भी नष्ट नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा को एक बार पहचान लेने के बाद वो पहचान 24 घंटे बनी रहती, इसी का नाम है आत्मानुभव। इसी को अपन दूसरे शब्दों में सम्यक ज्ञान कह सकते हैं। लेकिन सम्यक चारित्र के साथ जो निर्विकल्प अवस्था रूप शुद्धोपयोग की दशा होती है वो अधिक समय तक नहीं हो सकती, क्योंकि मन चंचल है, कब तक स्थिर रहेगा? जब तक अंतर्मुख ध्यान में लीन नहीं होते तब तक नहीं होता, ऐसा कह रहे क्या? प्रश्न हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें क्या आपत्ति है कि रत्नत्रय होने की, रत्नत्रय के बाद अंतर्मुख होना आवश्यक है, रत्नत्रय के अभेद दशा में जाना आवश्यक है, क्योंकि रत्नत्रय सब तक जब तक भेद अवस्था में रहेगा सविकल्प होगा, जब तक रत्नत्रय धारण करने के बाद प्रवृत्तियां होती रहेंगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो इसमें शब्दों का फर्क है, हम जो कह रहे हैं वो यही है कि ध्यान में लीन होंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप कह रहे हैं कि तप आराधना करेंगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, ध्यान क्या वस्तु है? सुनो सुनो सुनो, हमारे प्रश्न का जवाब दो, ध्यान क्या है? ध्यान क्या वस्तु है? चार आराधनाओं में ध्यान किसमें आएगा? ध्यान किसमें आता है, किस विभाग में आता है? सम्यक दर्शन में ध्यान आता है, सम्यक ज्ञान में आता है, और सम्यक चारित्र में तो 13 प्रकार का चारित्र आता है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति, और 12 तप में ध्यान आता है? 12 तप में कहाँ आता है ध्यान? 6 तो बहिरंग तप है और 6 अंतरंग तप है, और अंतरंग तप में ध्यान है कि नहीं है? निश्चित रूप से है, इसमें शंका की क्या बात है? तो फिर हमने कहा था कि ध्यान में लीन होंगे तो मोक्ष होगा, आप कह रहे हैं कि तपाराधना करेंगे तो मोक्ष होगा, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। हाँ वो तो हमने पहले बोला था, शब्दों में अंतर होने क्या है कि शब्दों की खींचातानी करने के कारण जीवन में निखार नहीं आ पाता, अगर अपन भावों को पकड़ ले फटाफट तो फिर बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, असली में शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है, आप केवल अपना जीवन पढ़ लो और सिर्फ अंतर्मुख होकर अपना निरीक्षण कर लो पर्याप्त है। सब लोग थोड़ी शास्त्र पढ़ते हैं, क्या कभी मनुष्य गति के जीवों को छोड़कर किसी और गति वाले ने शास्त्र पढ़े? पर उन गतियों में सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ? बराबर हुआ है। पर शास्त्र अपन इसलिए पढ़ते हैं कि अपन दुर्ध्यान से बच जाए, क्योंकि मनुष्य के पास दुर्ध्यान के जितने साधन है उतने साधन कहीं और नहीं है। मनुष्य जो पाप कमा सकता है, जो पुण्य कमा सकता है, वो सबसे अलग है। 7वें नरक जाने के भाव मछली और मनुष्य कर सकते हैं, और मछली तो कहो एक बार में 7वें नरक से जाकर के निकल के छूट भी जाए, लेकिन मनुष्य जो 7वें नरक के मुनि हत्या आदि के पाप कमाकर जब वहां जाता है तो भव भवांतरों तक के वो दुखी होता है। तो इस तरह अनुभूति आत्मानुभूति सम्यक ज्ञान की श्रेणी में है, और शुद्धोपयोग सम्यक चारित्र की एक अवस्था का नाम, और वो भी बहुत उच्च कोटि की अवस्था है। साधारण मुनि नहीं होते शुद्धोपयोगी, कोई महामुनि होते। तो इसलिए शुद्धोपयोग और आत्मानुभव, इन दोनों के फर्क को अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताकि फिर समय सार में कोई कठिनाई नहीं है ज्यादा, सिर्फ अर्थ निकालते समय कहीं कहीं पर उलझन आ जाती है, क्योंकि शब्द थोड़े जटिल हैं, और शब्द जटिल होने के कारण और एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने के कारण कई बार भ्रम हो जाता है। आत्मा शब्द के 3 अर्थ होते हैं, अनुभूति के 2 अर्थ होते हैं, तो अब इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया जाए, ये समस्या आती है ना। तो यहाँ पर आत्मा का अर्थ क्या लेंगे, जीव। तो जीव अगर कहोगे तो जीव में तो द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें हैं, वही प्रश्न पहले जो हमने एक दिन रखा था ना, तो द्रव्य को लेंगे, गुण को लेंगे, पर्याय को लेंगे। या फिर तीनों को लेंगे, द्रव्य गुण पर्याय सबको मिलाकर। अनुभव किसका होगा, अगर अनुभव का अर्थ आप एहसास लेते हैं, अनुभव केवल वर्तमान पर्याय का ही हो सकता है, और वो भी अपनी पर्याय का, किसी दूसरे की पर्याय का अनुभव नहीं कर सकता एक जीव। फिर अनुभव शब्द का अर्थ, तो आत्मानुभव का अर्थ जीव द्रव्य का एहसास नहीं है, या जीव द्रव्य की वर्तमान पर्याय का एहसास, उसको आत्मानुभव नहीं कहेंगे। और फिर यथोदित आत्मानुभूति का खुलासा करते हुए कहा कि 5 विशेषणों से युक्त आत्मा को पहचानना आत्मानुभूति है। तो वो आत्मा क्या है, 5 विशेषणों से युक्त जो आत्मा है, वो उस स्वभाव दृष्टि से शुद्ध निश्चय से देखा हुआ अपना ही जीवात्मा है। तो उसकी अनुभूति, उसकी पहचान, अपने आप की पहचान का नाम आत्मानुभूति है। ठीक है, ठीक है। आज चर्चाओं में निकला है समय, कुछ कलश और फिर टीका की पंक्तियां देख ली, गाथा है तो आगे नहीं बढ़ पाई, कोई दिक्कत नहीं। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकायो, नहीं छोड़ता देवगति में जाने पर, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता देवगति में, साथ में जाए नरक जाते समय छोड़ता, अगर क्षय समय हो तो छूट जाएगा, तो सक्षम में तो मरण ही नहीं होता।